श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है या हमारा अगला शीर्षक है क्रीमिया का युद्ध। कुछ इतिहासकारों का मत है कि क्रीमिया का युद्ध शायद इतिहास का सबसे निरर्थक युद्ध था। वास्तविकता यह थी कि यह युद्ध बिना किसी खास कारण के यूं ही शुरू हुआ, लेकिन उसके परिणाम बेकार नहीं हुए। वैसे लड़ाई का कारण निहायत मामूली था। तुर्की साम्राज्य के विस्तार ने फिलिस्तीन को हड़प लिया था। फिलिस्तीन में बेथलहम का चर्च ईसाइयों के लिए पवित्र तीर्थ है। तीर्थ की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उनकी देखरेख के लिए प्रमुख ईसाई देशों और तुर्कों के बीच समझौता हो गया था कि ईसाई पादरी नेटिविटी के चर्च का प्रबंध देखेंगे। कुचुक कैनारदजी की संधि 1774 के समय तुर्क के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का संरक्षक रूस था। इसलिए नेटिविटी चर्च की देखभाल का कार्य ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रधान देश रूस और कैथोलिक चर्च के मुख्य देश फ्रांस को मिला था। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर था। रूस के पादरियों के पास चर्च के प्रधान द्वार की चाबी रहती थी और कैथोलिक पादरियों के पास बगल के दरवाजे की। यही प्रबंध चलता आ रहा था और इसे सम्मान का प्रश्न नहीं बनाया गया था। जब नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राष्ट्रपति और फिर सम्राट बना तो उसे अपना प्रभाव जताने की आवश्यकता पड़ी। इसी बीच कैथोलिक पादरियों ने चर्च के प्रमुख द्वार की चाबी भी पाने की मांग की, क्योंकि उसके अनुसार बगल के दरवाजे की चाबी रखने के कारण उसका महत्व कम हो जाता था। यह विवाद स्थानीय स्तर पर या थोड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव से तय हो जाता, लेकिन नेपोलियन ने इस समस्या में भी मौका देखकर उसने एक साथ कैथोलिक जनमत को खुश करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए कैथोलिक पादरियों का पक्ष लिया। अब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया। रूस के तुर्की स्थित राजदूत मेंसिकाफ ने फ्रांसीसी मांग का विरोध किया, लेकिन इंग्लैंड के राजदूत रेडक्लिफ ने इसका समर्थन कर दिया। समस्या और पेचीदी हो गई। अब तुर्की के लिए यह मुश्किल था कि किसको खुश और किसको नाराज रखें। इंग्लैंड के समर्थन के कारण वह फ्रांसीसी मांग की अवहेलना नहीं कर सकता था। इस समय रूस ने एक और मांग की। उसने तुर्क स्थित ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायियों की देखरेख करने वालों की ही नहीं संरक्षक भी मान लिया जाए। ऐसा मान लेने से राज्य के अंदर एक और राज्य जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी, इसलिए रूस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। बात बढ़ गई। रूसी राजदूत नाराजगी से रूस वापस चला गया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इस तरह बात का बतंगड़ बन गया और ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसका कोई भी समझ में आने वाला कारण नहीं था। रूसी सेना द्वारा काला सागर के पश्चिमी तट पर हमला कर देने से इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया और दोनों देशों की सेनाएं काला सागर की ओर चल पड़ी। हालांकि युद्ध रोकने के लिए वियना में एक सम्मेलन भी हुआ जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। सेना अंत में युद्ध अनिवार्य हो गया। रूसी नौसेना ने तुर्की नौसेना को बुरी तरह परास्त किया और अब तक इंग्लैंड और फ्रांस की नौसेनाएं काला सागर पहुंच चुकी थी। तुर्क भी बहादुरी से लड़ रहे थे। आसिया के हस्तक्षेप की संभावना बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में रूस ने अपनी सेनाएं अधिक उत्तर की ओर हटा ली और उसकी नौसेनाएं सेवस्टोपोल के नौसैनिक गढ़ में वापस बुला ली गई। अब युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन नेपोलियन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे तो एक विजय की आवश्यकता थी, वह भी रूस के खिलाफ, क्योंकि इससे नेपोलियन प्रथम की रूसी अभियान के समय हुई पराजय का प्रतिशोध मिल सकता था। इंग्लैंड का हित रूस को कमजोर बनाने में था, इसलिए रूसी नौसेना को नष्ट कर देने का फैसला किया गया। काला सागर के उत्तर में क्रीमिया के दलदल से भरे प्रायद्वीप में अंग्रेजी सेनापति रैगलन ने फ्रांसीसी जनरल सैंतारनु के नेतृत्व में सेनाएं रूस के सेना को आल्मा नामक स्थान पर पराजित हुई। तत्काल सेवास्टोपोल पर हमला होता तो युद्ध का फैसला हो सकता था, लेकिन फ्रांसीसी सेनापति की दूसरी योजनाओं के कारण रूसियों ने तैयारी पूरी कर ली और उनका गढ़ मजबूत हो गया। अब भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सेवास्टोपोल के चारों ओर घेरा डाले सैनिक लड़ते रहे, लेकिन दिन बीत गया लेकिन रूसियों ने हार नहीं मानी। सैनिकों की स्थिति दयनीय हो गई। ठंड और बीमारी की हालत में उनको पूरी रसद नहीं मिल पा रही थी। इंग्लैंड की राजनीति में हुए परिवर्तन से स्थिति में सुधार आया। यह परिवर्तन मुख्यतः पामर्स्टन के प्रधानमंत्री बनाए जाने से हुआ था। समाचार पत्रों में, विशेषकर द टाइम्स में, क्रीमिया की अमानवीय स्थितियों का वर्णन पढ़कर ब्रिटिश जनता के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पामर्स्टन के सक्रिय नेतृत्व में आक्रमण का नया दौर शुरू हुआ और 1885 में रूसियों को सेवास्टोपोल से हट जाना पड़ा। रूसीगढ़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इस समय जार निकोलस की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर द्वितीय कुछ चाहता था। दूसरा पक्ष भी थक चुका था, उसका भी लक्ष्य पूरा हो चुका था, विशेषकर नेपोलियन का। इसलिए समझौता वार्ता शुरू हुआ। अंत में पेरिस में सम्मेलन हुआ। क्रीमिया के युद्ध के समक्ष प्रत्यक्ष परिणामों से महत्वपूर्ण परोक्ष परिणाम के रूप में यह हुआ कि कैबूर की दूरदर्शिता से इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि बनी। इसी युद्ध ने अंग्रेजी साहित्य को एक अमर कविता चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड दी, जो युद्ध से जूझते अंग्रेज सैनिकों की जीवन तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवाओं ने सारी दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि आहत व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन इस आदर्श के बाद रेड क्रॉस संस्था का जन्म हुआ। 1856 में पेरिस में शांति संधि हुई। एक बार फिर नेपोलियन को सम्मान मिला, लेकिन संधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा थी, चर्च की चाभियों की नहीं। विजित भूमि वापस कर दी गई। रूस ने सेवास्टोपोल को फिर से गढ़ न बनाने का वादा किया। दार दानेल में किसी की भी देश की युद्धचिप न जाने की मनाही कर दी गई, परंतु हर देश व्यावसायिक जहाजों के जाने पर जाने का सामान का अधिकार दे दिया गया। काला सागर में रूस और तुर्क दोनों को नौसेना न रखने का कहा गया। डैन्यूब नदी व्यापार के लिए खोल दी गई। मोल्डेविया और वैलेसिया पर तुर्क का प्रभाव नाम मात्र का रह गया। इनकी और सर्बिया की वास्तविक स्वतंत्रता की गारंटी पेरिस में एकत्र हुए राज्यों ने दी। मोल्डेविया की थोड़ी सीमा विस्तार हुआ, लेकिन उसे रूस के बेसारेविया प्रांत का एक हिस्सा प्राप्त हो गया। तुर्कों को भी संतुष्ट करने के लिए, उनके मामलों में हस्तक्षेप न करने के वादे के साथ यूरोपीय परिवार में शामिल कर लिया गया। अब यूरोप के सम्मेलनों में हिस्सा ले सकता था। यह परंपरा सदा के लिए जीवित रही है। यूरोप से तुर्की का साम्राज्य समाप्त हो जाने और तुर्क से एशियाई देश होने के बावजूद तुर्कों को यूरोपीय व्यवस्था का अंग समझा जाता रहा है। मुस्तफा कमाल पाशा के पश्चिमीकरण और तुर्की को पश्चिमी देशों की सैनिक संघ नाटो में सम्मिलित किए जाने की इसी समय जाने से इसी परंपरा का निर्वाह हुआ। मूल प्रश्न के बारे में बस इतना ही निर्णय हुआ कि रूस तुर्की के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को संरक्षण देने का दावा छोड़ दे। इसी संधि से पूर्वी समस्या का कोई अस्थायी हल नहीं ढूंढा गया। रूस की महत्वाकांक्षाओं पर पूरी तरह नियंत्रण न लग सका, वह कमजोर भी नहीं हुआ। केवल तुर्की के पतन को रोका गया। मृतपाय बीमार को दवा देकर जिलाने का प्रयास किया गया। बाल्कन प्रायद्वीप की मूल समस्या राष्ट्रवाद के विकास को पूरी तरह नहीं समझा गया। तुर्की के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करके उसने उन ईसाइयों को हताश कर दिया जो तुर्की अत्याचारों के बढ़ने पर ईसाई देशों से मदद की आशा करते थे। इस प्रकार पूर्वी समस्या का हल करने के स्थान पर पेरिस में लीपापोती की गई और मूल समस्या को कुछ वर्षों के लिए टाल दिया गया। संघर्ष के पुराने कारण मौजूद रहे और दो दशकों के बाद युद्ध की पुनरावृत्ति हुई। पेरिस में एक अच्छी शुरुआत अवश्य हुई। अंतर्राष्ट्रीय कानून को संवैधानिक रूप ग्रेसियम की पुस्तक युद्ध और शांति के कानून के बाद 17वीं शताब्दी में ही स्वीकार किया जाता था, लेकिन उस पर अमल शायद ही कभी होता हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के लागू होने के लिए राष्ट्रों के बीच सहमति जरूरी है। पेरिस में इस दिशा में एक समझौता हुआ। समुद्री क्षेत्रों पर इंग्लैंड की प्रभुता निर्विवाद थी। फ्रांस के विरुद्ध युद्धों में उसे नियम बना लिया था कि युद्ध देशों का सामान यदि तटस्थ देशों के जहाजों में जा रहा है तब उस पर भी अधिकार कर लिया जाए। अब यह तरीका छोड़ दिया गया और नियम यह बना कि तटस्थ देशों में जहाजों पर न तो आक्रमण होगा न वे रोके जाएंगे। और न ही कोई देश किसी देश के व्यापार को क्षति पहुंचाने के लिए किसी तरह का प्रयत्न करेगा, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। पेरिस की संधि के बाद 20 वर्षों तक दक्षिण पूर्वी यूरोप युद्ध की चपेट में बना रहा। हर देश अपनी समस्याओं में उलझा रहा। इस दौरान इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बाल्कन में बढ़ती हुई राष्ट्रीय संकल्प। इसकी पहली अभिव्यक्ति मोल्डेविया और वैलेसिया में हुई। 1858 में इन दो प्रदेशों ने आपस में विलय की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। जब सीधे आज्ञा नहीं मिली तो दोनों प्रदेशों ने बड़ी कुशलता से एक जैसा संविधान बनाया और एक ही व्यक्ति को अपना राजा मान लिया। दोनों के वास्तविक एकीकरण का यह कदम पर्याप्त था। 1862 में दोनों प्रदेशों की व्यवस्थापिका सभाओं का विलय हो गया और उन्होंने अपना संयुक्त नाम रोमानिया रख लिया। 4 वर्षों बाद ऑस्ट्रिया के राज परिवार से संबद्ध चार्ल्स को रोमानिया का शासक बना दिया गया। कोई देश इस मामले में हस्तक्षेप न कर सका और बाल्कन प्रायद्वीप में यूनान सर्बिया के बाद रोमानिया के रूप में नए स्वतंत्र देश ने जन्म लिया। सेदान के युद्ध में नेपोलियन की पराजय और फ्रांस की दुर्गति के बाद रूस ने फिर सर उठाया। रूस के जार अलेक्जेंडर तृतीय ने यह तय किया कि चूंकि अब पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली एक सरकार का अंत हो गया, अतः उस संधि का कोई महत्व नहीं रहा। फ्रांस संकट में फंसा हुआ है, वहां सरकार के स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया था, इसलिए उसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं था। अब या तो इंग्लैंड को रूस की संधि न तोड़ने के लिए अकेले मजबूत कर सकता था या फिर चुप हो जाता। इंग्लैंड अकेले उलझने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने समय का इंतजार करना मुनासिब समझा। अनुकूल स्थिति देखकर रूस ने फिर काला सागर में सैनिक नवनिर्माण शुरू कर दिया। बाल्कन में राष्ट्रीय जागरण बढ़ रहा था और चेतना बढ़ने के साथ ही तुर्की का अत्याचारी शासन असह्य होता जा रहा था। छिटपुट वारदातें भी होती रहती थी। 1857 में हर्जेगोविना प्रांत में रूस शासन के प्रति क्षोभ का कारण कर वसूल करना था। अमीनों के साथ संघर्ष में कई तुर्क कर्मचारी मार डाले गए। यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे सारे प्रायद्वीप में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई और अराजकता फैल गई। ऑस्ट्रिया के चांसलर एंड्रासी ने रूस और जर्मनी से परामर्श किया और तुर्क के सुल्तान के सामने एक प्रपत्र प्रस्तुत किया। उसने बाल्कन में कई सुधारों की अनिवार्यता बताई। सुल्तान ने प्रस्ताव मान लिए क्योंकि उनके लागू होने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन राष्ट्रवादियों ने इस तरह के सुधारों और वादों के भुलाव में पड़ने से इनकार कर दिया। तब बर्लिन में एक और प्रपत्र तैयार हुआ जिसमें पहले तीन देशों के अतिरिक्त फ्रांस और इटली में ने भी सहमति प्रकट की। बिस्मार्क तुर्की द्वारा सुधारों की गारंटी तथा गारंटी की बात बर्लिन प्रपत्र में शामिल करने पर सहमत हो गया। इस प्रपत्र पर इंग्लैंड ने अपनी सहमति नहीं दी। अब तुर्की आश्वस्त हो गया कि हस्तक्षेप हुआ तो इंग्लैंड की सहायता अवश्य मिलेगी। इसी भरोसे उसने सुधार की गारंटी देने से इनकार कर दिया। कानून उसके हक में था क्योंकि उसके साम्राज्य का आंतरिक मामला था और दूसरे देशों को इसमें रुचि लेने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले की संधि इस बात की में स्वीकार किया गया कि तुर्की के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस समय स्थिति और बिगड़ी। बुल्गारिया में विद्रोह हुआ। इस बार तुर्क ने कहर ढा दिया। नियमित सेना के अतिरिक्त पेशेवर बदमाशों का इस्तेमाल किया गया और भयानक ढंग से लोग मारे जाने लगे। संचार साधनों का प्रसार हो चुका था, अब बातें छिपाई नहीं जा सकती थी। सारे यूरोप को पता चला कि तुर्क बाल्कन में साम्राज्यवाद का निर्मम और नंगा नाच नचा रहा है, लेकिन हस्तक्षेप कौन करे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डिजराइली घोर प्रतिक्रियावादी था। वह तुर्की के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन विरोधी दल के नेता ओजस्वी ग्लैडस्टन अपनी मानवतावादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने हर तरफ अपना भाषण देकर डिजराइली का विरोध किया। वह पार्लियामेंट में सरकार की निष्क्रियता का निंदा करता और सारे देश को बाल्कन के अत्याचारों के विरुद्ध जागरूक करता रहा। उसने तुर्क को यूरोप से सारे सामान के साथ बाहर फेंक देने की जोरदार वकालत की। सरदार पर इसका विशेष असर भले न हुआ हो, जनता की पूरी सहानुभूति बाल्कन वासियों की ओर हो गई और इस विषय में कुछ मांग करने लगी। अगला हेडिंग है बर्लिन कांग्रेस। 1876 में सुल्तान अब्दुल अजीज को हटाकर मुराद सुल्तान बन बैठा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही उसका तख्ता पलट कर दिया गया और अब्दुल हमीद सुल्तान हो गया। इस हलचल से यह स्पष्ट हो गया कि तुर्क साम्राज्य की आंतरिक स्थिति डावाडोल है। मौका देखकर सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, परंतु तुर्की ताकत इतनी कम नहीं हो गई कि छोटे छोटे राज्य उसे दबा ले जाएं। यद्यपि तुर्की के विरुद्ध युद्ध स्वयंसेवक भी लड़ रहे थे और इस बात का मजबूत सबूत था कि रूस युद्ध के परोक्ष रूप से समर्थन कर रहा था, तथापि तुर्की की विजय हुई। अब जार ने घोषणा कर दी कि बालकन की स्थिति संभालने के लिए यूरोप शक्तियों को पहल करना जरूरी है। उसने अपनी यह इच्छा बताई कि बड़े देश मिलजुल कर कुछ करें, और यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो रूस अकेले ही हस्तक्षेप करेगा। इस घोषणा का परिणाम इतना अवश्य निकला कि तुर्की की राजधानी में ही बड़े देशों का सम्मेलन हुआ, जहां बालकन के लिए सुधारों का नया कार्यक्रम बनाया गया। सुल्तान ने विजय के नशे में इसे मानने से इनकार कर दिया। जब जार ने अपनी ओर से तुर्क पर हमला कर दिया, अन्य देश देखते रह गए और रूसी सेना तुदलिबेन के कुशल नेतृत्व में तुर्की में घुसती चली गई। तुर्की के साहसपूर्ण प्रतिरोध के बावजूद प्लेवना के युद्ध में रूस ही जीत गए और एड्रियानोपुल तक पहुंच गए। रूसी सेना और आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुल्तान समझौता करने के लिए तैयार हो गया। सान स्टेफानो की संधि में सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रा के स्वतंत्र राज्यों को पूरी तरह मान्यता दे दी गई और तुर्की से नाममात्र के संबंध को भी समाप्त हो गए। रोमानिया ने बेसारेबिया का प्रांत रूस को लौटा दिया। इस संधि की सबसे ऐतिहासिक शर्त थी कि नए राज्य बल्गेरिया का निर्माण, जिस पर तुर्की की प्रभुसत्ता नाममात्र की रहती थी। इस संधि से तुर्की के यूरोप पर आधिपत्य का अंत निश्चित था। इंग्लैंड को यह संधि किस तरह स्वीकार्य नहीं था। अन्य बड़ी शक्तियां भी इन शर्तों में अपने प्रभाव का अंत देख रही थी। सान स्टेफानो पूर्णतया रूसी जीत को स्वीकार करती थी। रूस का प्रभाव और सम्मान असाधारण रूप से बढ़ रहा था, इसलिए पश्चिमी देशों का विरोध स्वाभाविक था। यूरोप की राजधानियों में गतिविधियों में तेजी आ गई। परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और तुर्की के साथ किसी संधि को अंतिम रूप देने के लिए यूरोप की बड़ी शक्तियों की सहमति आवश्यक बताई गई। रूस को पश्चिमी देशों पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन जब उस समय के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नेता बिस्मार्क ने कहा कि ईमानदार मध्यस्थ बनने के लिए तैयार है तो रूस भी सहमत हो गया। परस्पर बातचीत में अधिकांश मुद्दों पर सहमति होने लगी। समझौते को औपचारिक स्वरूप देने के लिए बर्लिन में बड़े देशों की एक सभा, कांग्रेस ऑफ बर्लिन, बुलाई गई। 1878 में बर्लिन कांग्रेस बिस्मार्क की कूटनीतिक जीत थी। इस संधि में बल्गेरिया का आकार छोटा कर दिया गया, क्योंकि बल्गेरिया रूसी प्रभाव में था। वह जितना ही बड़ा होता रूस को लाभ होता। इसलिए इतिहासकार गूज का मत है कि बर्लिन कांग्रेस का मुख्य काम बृहत्तर बल्गेरिया का विनाश था। एक तरफ रूसी प्रभाव कम करने, दूसरी ओर यूरोप में समाप्त हो रहे तुर्की को एक नए सिरे से जीवित कर दिया। मैसेडोनिया पर तुर्की का सीधा प्रभुत्व मान लिया गया। पूर्वी रोमानिया पर सुल्तान के अधीन एक ईसाई गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। सर्बिया और मोंटेनेग्रा की सीमा बढ़ाकर और उसकी रोमानिया की स्वतंत्रता बरकरार रखी गई, लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया को शासन के लिए सौंप दिया गया। ईमानदार दलाल बिस्मार्क ने प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं उठाया। वास्तव में सबसे अधिक लाभ बिस्मार्क और जर्मनी को ही हुआ था। उसके चांसलर बिस्मार्क को सारे यूरोप के निर्णायक की भूमिका सौंपी गई थी। पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस या लंदन में न होकर बर्लिन में हो रहा था। नवोदित जर्मनी के लिए ऐसा सम्मान और ऐसा बड़ा प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजराइली ने बर्लिन से लौटकर कहा कि वह बर्लिन से सम्मानजनक शांति का प्रस्ताव लेकर लौटे हैं। यह सच था कि रूस के युद्ध टल गए और बातचीत से समाधान निकल आया। साथ ही तुर्की का यूरोप से पूर्ण निष्कासन भी थम गया। उसमें एक बार फिर प्राण फूंक दिया गया। इनाम में साइप्रस का युद्ध भी हाथ लगा। इंग्लैंड को बिना गोली चलाए बिना एक पैसा खर्च किए यह सब मिल गया। इजरायली इस बात पर गर्व कर सकता था। रूस का प्रभाव कम हुआ और तुर्की साम्राज्य में लाखों ईसाइयों को मुक्ति मिल गई। लेकिन बर्लिन कांग्रेस का एक पक्ष और भी था। अभी 2 लाख ईसाई तुर्की साम्राज्य में आरक्षित थे। बल्गेरिया से रोमानिया का प्रदेश छीन जाना उपयुक्त नहीं था, क्योंकि उसे अलग नहीं रखा जा सकता था। बोस्निया और हर्जेगोविया ऑस्ट्रिया को सौंपने का कोई औचित्य नहीं था। रूस का प्रभाव इधर बढ़ने से रोका गया तो यह प्रभाव एशिया में बढ़ने लगा और इंग्लैंड के लिए अब बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। रूस का भय भारतीय सरकार को आक्रांत करने लगा। कुछ लोगों का मत है कि बर्लिन कांग्रेस एक पूर्व नियोजित सुखांत नाटक था। यह एक भ्रामक मत है। ऐसा पश्चिमी देश विशेष रूप से इंग्लैंड को भले ही लगता हो किंतु वास्तव में रूस और बाल्कन राष्ट्रों के लिए उस समय भी त्रासद था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो पूरी तरह ट्रेजी सिद्ध हुआ। यहाँ हमें यह भी सोचना चाहिए कि कम से कम इंग्लैंड अनुकूल संधि की अपेक्षा नहीं कर सकता था। हालांकि पूर्व समस्या की बर्लिन में कोई अस्थायी हल नहीं ढूंढा गया, परंतु कुछ समस्याएं अवश्य सुलझ गईं। सच तो यह है कि बिस्मार्क की षड्यंत्रकारी कूटनीति के सहारे वह जर्मनी को निरापद रखना चाहता था बर्लिन में पूरी तरह सफल हुई। रूस को 3 सम्राटों के संघ में शामिल करने के बावजूद उसे छला गया। रूस और ऑस्ट्रिया की बाल्कन में पुरानी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को निकटता और अधिक उपयोगी समझा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रूस ने बोस्निया और हर्जेगोविना का लाभ देकर उसे बाल्कन में बुरी तरह उलझा दिया। असलियत यह थी कि बिस्मार्क की सारी ईमानदारी जर्मनी के प्रति थी। उसके हित के लिए वह किसी की से भी बेईमानी कर सकता था। बर्लिन कांग्रेस बिस्मार्कीय व्यवस्था का पूर्वाभास प्रस्तुत करता है, लेकिन उस समय उसका सही अर्थ कोई नहीं समझ सका। बर्लिन कांग्रेस के 4 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज पर मुहरें बिछा दी जाती रहीं। पूर्वी समस्या का गौण स्थान होता गया। इसी बीच एक नया तत्व उभर रहा था। बाल्कन प्रायद्वीप में बड़ी शक्तियां की प्रतिस्पर्धा के साथ अब नवोदित राष्ट्रों का आपसी संघर्ष भी बढ़ने लगा। 1881 में थेसाली प्रांत यूनान को दे दिया गया। रोमानिया के शासक ने कैरोल प्रथम के नाम से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1885 में बाल्कन राज्यों की परस्पर स्वतंत्रता का पहला विस्फोट हुआ। सर्बिया ने बल्गेरिया पर एक विफल आक्रमण किया। इससे तनाव तेजी से बढ़ने लगा। 1894 में तुर्की साम्राज्य की एक दूसरे क्षेत्र अर्मीनिया के अत्याचार होने के समाचार मिलने लगे। अर्मीनिया एशिया में था और वहाँ की जनता न कैथोलिक थी और न ऑर्थोडॉक्स। ऐसे में ईसाई देश उसमें क्यों दिलचस्पी लेते। यूरोप के बाहर तो मानवतावादी भी जुल्म करते थे और किसी को बोलने नहीं देते थे। इंग्लैंड में भी अर्मीनिया में रुचि लेने का कोई लाभ नहीं देखा। रूस ने विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, केवल कुछ विरोध प्रकट किया और तुर्की ने सुधारों का वादा करके सबको खामोश कर दिया। अत्याचार यथावत होता रहा। 1896 में क्रीट में विद्रोह हुआ। यूनान की नज़र क्रीट पर थी। वह क्रीट को तुर्की से मुक्ति कर स्वयं हड़पना चाहता था। यूनान ने क्रीट की मदद की। बड़ी शक्तियों ने तुर्की पर दबाव डालकर उसे स्वतंत्रता दिलवा दी। तुर्क प्रभुता नाम मात्र को ही बची रही। यूनान और तुर्की में संघर्ष छिड़ गया। फिर बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप से शांति हुई। यूनान को थेसाली का एक भाग तुर्क को लौटाना पड़ा। क्रीट पर बाह्य प्रभाव समाप्त हो गया। वह पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। कुछ ही दिन बाद तुर्की में अनपेक्षित परिवर्तन होने शुरू हो गए। 1908 में स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध युवा तुर्क आंदोलन को सफलता मिली। तुर्की में सुल्तान को इतिहास में पहली बार एक पार्लियामेंट की स्थापना के लिए सहमति देनी पड़ी। क्रांतिकारियों की सेना का भी समर्थन प्राप्त था। पश्चिमी यूरोप के देशों को चिंता हुई कि प्रजातांत्रिक तुर्की शक्तिशाली हो जाएगा और वह अपने खोए प्रदेशों की मांग कर देगा। घबराकर ऑस्ट्रिया ने बर्लिन में कांग्रेस में प्रांत कांग्रेस में प्राप्त बोस्निया और हर्जेगोविना पर गोविना का उसी कांग्रेस के अनुबंधी अवहेलना करने करके पूर्ण विलय कर दिया। सर्बिया ने इसका विरोध किया, उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने आक्रामक विदेश नीति के लिए तैयार था, घोषणा किया यदि रूस सर्बिया की मदद करेगा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया का मदद करेगा। धनकी ने काम किया और तनाव समाप्त तो नहीं हुआ परंतु दब गया।